चौथे अध्याय पे तपस्या या आत्मनिग्रह का अभ्यास है ना। सो अगर हम तात्विक दृष्टि से देखें तो हम लोग जो भी अच्छा या बुरा इस संसार में दुख या सुख भोग रहे हैं, हम वो हमारे अच्छे या बुरे कर्मों की वजह से है ना। और जो हमारे अच्छे और बुरे कर्म हैं वो हम क्यों कर रहे हैं? इच्छाओं से प्रेरित होकर, है ना। ऐसा नहीं है कि इच्छाओं का मतलब गलत ही है, इच्छाएं अच्छी भी होती हैं। स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, कुएं खुदवाना, आजकल तो खैर कुएं नहीं खुदते लेकिन चलो ट्यूबवेल लगा देते हैं लोग, नहीं प्याऊ बनवाना, हॉस्पिटल्स खोलना। लेकिन हॉस्पिटल खोलना अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि लोग चैरिटेबल के नाम से खोलते ज़रूर हैं, फिर वो इतने बड़े हॉस्पिटल में एक छोटा सा कमरा वो चैरिटेबल के नाम से छोड़ देंगे, कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा उसको, बाकी पूरे हॉस्पिटल में कमाई का जरिया बना देते हैं बेसिकली। तो ये उनका वो टैक्स प्लानिंग है, ये अभी चैरिटेबल नहीं रह गया बेसिकली। इसी तरह स्कूल्स का भी है। सो कहने का मतलब है कि इच्छाएं ज़रूरी नहीं है कि बुरी ही होंगी, अच्छी इच्छाएं भी हैं। और जो अच्छी इच्छाओं को हम कार्यान्वित करते हैं, उस पर काम करते हैं अच्छी इच्छाओं पर, तो उसके फलस्वरूप हमें अच्छा फल भोगने को मिलता है। और जो बुरी इच्छाएं हमारे मन में है उसके अनुसार हमें बुरा फल भोगने को मिलेगा, है ना। सो और ये जो इच्छाएं हैं ये कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं? रजोगुण से, नहीं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, नहीं श्लोक है ना भगवद गीता का, कि जो ये काम वासना है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, ये उत्पन्न हो रही है रजोगुण से। तो क्या जो रजोगुण से काम वासना आ रही है जो, और जिसमें कई बार परोपकार की भावना भी छिपी होती है, तो क्या वो बुरी है? क्या हमें उस पर अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या कहते हो आप लोग? हाँ क्यों?
जो करने की भावना है वो अपनी इच्छाओं से प्रवृत्ति है, उसमें अपने लाभ के लिए कर रहा हूँ।
नहीं लेकिन परोपकार में कोई कुआं खुदवा रहा है या ट्यूबवेल लगवा दिया किसी ने, उसमें उसका अपना लाभ क्या है?
वो उससे अच्छे कर्मों से उसे अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी, तो जब अच्छे लोगों से प्राप्ति होगी तो वहाँ पे सुख में भक्ति नहीं कर पाएगा और ज़्यादा उन सुख सुविधाओं का जो एडवांटेज है उनको वो भक्ति करने में यूज़ नहीं करेगा, वो उनको मिस यूज़ करेगा भक्ति ना करने के लिए और बुरे काम करने के लिए।
हरे कृष्णा। प्रभु जी, रजोगुण में रह करके जो काम करता है व्यक्ति इच्छाओं से कि अगर अच्छा करूँगा तो अच्छा भोगने को मिलेगा, तो वो भी इंद्रिय तृप्ति है और विषय वासना है वो भी एक, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे जीवन में दुख ना आए, सुख ज़्यादा रहे। तो उसकी जो पुण्य कर्म करने की जो ये है, जैसे हॉस्पिटल बनवाना या कुएं खुदवाना, तो उससे उसको हो सकता है कि कष्ट कम आए और सुख ज़्यादा रहे उसकी ज़िंदगी में, लेकिन वो सुख नहीं है बेसिक, वो सिर्फ वो भी एक इंद्रिय तृप्ति है।
हरे कृष्णा। मुझे बात हो रही कि परोपकार की, मतलब कि वो परोपकार करेगा तो उसके लिए सही है कि गलत है? मतलब परोपकार करा उसे, मतलब कि उच्च लोक मिल भी गया, तो कह रहे हैं कि उच्च लोक मिलने के बाद उसके पुण्य छीणों के द्वारा फिर उसी धरातल पे आ गया, तो प्राश्चित करने की बार बार की जो पाप करने की वो दोबारा फिर चक्र चालू हो गया, तो फायदा उसका कुछ दिख नहीं रहा, उसका फायदा दिख रहा है। यदि वो कृष्ण महाभारत भगवान के अनुरक्त काम करेगा तो शायद उसका दोबारा चक्कर ना चले।
सो देखो, इसके दोनों उत्तर हैं कि अच्छा भी है बुरा भी है परोपकार करना, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति परोपकार कर रहा है अगर, तो उसमें वैराग्य की भावना है। जो धन अपने ऊपर लगा सकता था उसने दूसरों के लिए वो धन खर्चा, ठीक है ना। तो ऐसा करने से धीरे धीरे उसमें वैराग्य उसके अंदर आएगा, नहीं, लेकिन उसका जो लाभ है, लाभ अस्थाई है, जो उसको भी मिल रहा है और जो दूसरों को भी मिल रहा है,
उस कर्म से जो बंधता
है, हाँ, है ना,
वो भी बंधने वाला ही है।
हाँ, और दूसरा जो भरत प्रभु कह रहे हैं कि जो उससे उसको जो भी लाभ मिलेगा वो उसको और बांधेगा। यमराज जी यमदूतों को कह रहे हैं छठे स्कंद में, हाँ, जब अजामिल की कथा से पहले उन्होंने बोला कि जो अच्छे काम कर, जो बुरे काम कर रहा है वो तो बुरा है ही, जो अच्छे काम है वो भी बुरे ही हैं, क्योंकि उससे भी कर्म बंधन में फंस रहा है वो बेसिकली, है ना, यही पॉइंट है ना आपका। सो और भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में यही कह रहे हैं, निस्त्रैगुण्य भवार्जुना, कि तीनों गुणों से ऊपर उठो। सो जो रजोगुण से प्रभावित अगर कोई अच्छा काम भी है तो भगवान कृष्ण उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप तीनों गुणों से उठकर कार्य करो। हाँ, और जो हम सुख दुख भोग रहे हैं, सो बात हो रही थी कि रजोगुण समुद्भवा, है ना, तो जो काम इच्छा है, जो क्रोध है, रजोगुण से उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसका इलाज क्या है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं उसका इलाज है तपस्या या आत्मनिग्रह, ये तपस्या करनी चाहिए। यही जो चौथा अध्याय है कृष्ण भामरामृत एक अनुपम उपहार, इसका टॉपिक ही, टाइटल ही यही है, है ना, कि आप तपस्या करो। हाँ, और फिर प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि देखो तपस्या, बहुत सारे योगी हैं वो तपस्या करते हैं, कोई लोग ऐसे एक हाथ ही करें, हम हाथ खड़ा रखेंगे, है ना, आप इतना आसान नहीं है, आधे घंटे में दिमाग खराब हो जाता है, और वो लोग सालों तक हाथ खड़ा रखा हुआ, बेकार हो गया ये हाथ, मेरा नहीं है ये हाथ, मुझे क्या लेना देना, हम शरीर नहीं आत्मा है, ये सोचने के लिए हाथ खड़ा रखा हुआ उन्होंने, नहीं। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखो जो योगी हैं वो सर्दियों में पानी के अंदर खड़े रहते हैं गले तक, गर्मियों में चारों तरफ आग जला के बैठे रहते हैं, हाँ, तो क्या हमें भी वो तपस्या करनी चाहिए। तो हमें अगर हम देखें तो वो तपस्या कर ही रहे हैं, विशेष रूप से जो महिलाएं हैं वो तपस्या कर ही रही हैं, सर्दियों में ठंडे पानी से कपड़े धो रही हैं, बर्तन धो रही हैं, गर्मियों में खाना बना रही हैं, नहीं, तो प्रॉब्लम तो है ही है ना, तो कर भी रही हैं वो लोग, है। सो लेकिन क्या उसको हम तपस्या के रूप में लेते हैं क्या, हम उसको तपस्या के रूप में नहीं ले रहे। तो दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है, कार्य भी महत्वपूर्ण है और किस भावना से किया जा रहा है वो भी महत्वपूर्ण है, नहीं, अगर हम सिर्फ अच्छी भावना है कार्य नहीं कर रहे बेकार है ना, अगर हम कार्य कर रहे हैं उसके पीछे भावना गलत है तो वो भी बेकार है। सो जो हम अच्छा बुरा कार्य कर रहे हैं उससे हम दूर हट सकते हैं तपस्या के माध्यम से, है ना। सो अब तपस्या की, प्रभुपाद इस अध्याय में तपस्या को विस्तार से एक्सप्लेन कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि देखो तपस्या का जो मतलब है कि स्वेच्छा से अपने ऊपर लगाम लगाना, नहीं, और कहाँ पर बताया गया है स्वेच्छा से अपने ऊपर लगाम लगाने के लिए, कहाँ बताया गया है, उपदेशामृत रूपा गोस्वामी वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उधर पस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अपि माम पृथ्वीम सशिष्यात, है ना। सो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि वाचो वेगम, वाणी का वेग, ऐसा नहीं जो मन में आए उठा के बोल दो, जो संयम से बोलता है उसकी कीमत है। जो अनसंत बोल रहा है उसकी बात को कोई वैल्यू लगाता है? कोई उसकी बात की वैल्यू नहीं लगाता। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, मन का जो वेग है, ये करना है वो करना है, वो अच्छा लग रहा है ये अच्छा लग रहा है, नहीं, क्रोध वेगम, क्रोध पे अपने नियंत्रण करके रखो, नहीं। फिर है जीवा वेगम, कि ऐसा नहीं है कि जो टेस्टी है खा लो, है ना, कोई लेना देना नहीं है किसने बनाया, कैसे बना है ये, मतलब स्वच्छ है शुद्ध है नहीं है, किस मानसिकता से बनाया गया है, क्या भगवान को भोग लगाया नहीं लगाया, मतलब कुछ विचार नहीं है। वो रसगुल्ला, रसगुल्ला मतलब खा लो भैया इसको, नहीं। फिर जीवा वेगम उधर पस्थ वेगम, और पेट, हमेशा पेट भरने के बारे में सोचते रहो। उधर पस्थ, पस्थ जो है, उधर पस्थ मतलब जो हमारे जननांग है उनको संतुष्ट करने के चक्कर में लग रहो। और चैतन्य चरितमृत में कहा गया है ना, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए, जो हमेशा शिष्ण मतलब जननांग और उधर पेट भरने के चक्कर में रहता है और अपने जननांगों को संतुष्ट करने के चक्कर में रहता है, शिष्णोदर परायण, परायण मतलब सरेंडर्ड है, समर्पित है कि भैया जननांग संतुष्ट करने हैं या उधर भरना है अपना, शिष्णोदर परायण कृष्ण ना ही पाए। हाँ, तो पूरा मुझे पहले ही लाइन याद नहीं आ रही, इति उति धाय है, याद नहीं आ रहा, चलो यानी आपको याद है किसी को? अच्छा, एनी हाउ, चलो शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। सो जो इस तरह से भाग रहे विषय भोगों के पीछे तो उसको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए रूपा गोस्वामी ने बहुत ही ज़्यादा जोर दिया है कि आत्म संयम करें, आत्म नियंत्रण करें। तो लेकिन अगर भोग एक रोग है और तपस्या उस रोग का निदान है तो उसको व्यवहारिक रूप में कैसे लेके आए, नहीं, ये प्रश्न खड़ा हो गया अब यहाँ पर कि हम मरीज हैं, हमें क्या रोग है कि हम भोग के बारे में सोचते रहते हैं, नहीं। अब ये भोग से बचने का क्या तरीका है कि हम तपस्या करें, आत्मनिग्रह, आत्म संयम। हाँ, तो लेकिन वो कैसे करें प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली कैसे करें? तो भागवतम के प्रथम स्कंद में कहा गया है कि जो कुशल चिकित्सक होता है, वो जिस चीज से रोग आता है उसी वस्तु से उसका निदान कर देता है। तो उदाहरण देते हैं, जैसे दूध पीने से पेट खराब हो जाए तो दही किससे बनता है? दूध से बनता है। तो उसको दही में काली मिर्च, नमक, काला नमक डाल के उसको बोलेंगे खाओ, पेट ठीक हो जाएगा, है ना। तो दूध से पेट खराब हुआ लेकिन दूध से बनी वस्तु से ही ठीक हो गया। सो इसका क्या मतलब है कि जिस वस्तु से के कारण हम रोगी हैं, भोग के कारण, तो वो भोग में हम कुछ मिला दें, जैसे दूध में खटास मिलाई दही बन गया, तो उस भोग में हम कुछ मिला दें तो वही उसकी दवाई बन जाएगी। तो हमने क्या मिलाना है उसके अंदर? वो हम, हाँ, और भगवान इसकी कहाँ पर पुष्टि कर रहे हैं? यद जुहोषी यद करोषी यद अशनाशी यद जुहोषी ददासी यद यद तपस्यसी कौन्तेया तद कुरुष्व मद अर्पणा, मुझे अर्पण कर दो। आपको अच्छा खाने की इच्छा है, बड़ी अच्छी बात है, आप बनाओ, भगवान को ऑफर कर दो, खा लो, है ना। आपको गाना गाने की इच्छा है, भजन गाओ, नहीं। आपको नाटक देखने की इच्छा है तो जैसे अब कल नाटक होगा यहाँ पर, कृष्ण भावना भावित नाटक होगा, तो नाटक देख लो, कृष्ण भावना भावित नाटक देख लो, आपको डिबेट करनी है, चर्चा करनी है, भागवतम पे, भगवत गीता पे चर्चा कर लो, चैतन्य चरितामृत पे चर्चा करो, ये ऐसे कैसे हुआ, ये सिद्धांत कैसे आया, इसके पूर्व पक्ष क्या है, हाँ, और कैसे इसको हम काट सकते हैं इसको। पूर्व पक्ष का मतलब है कि इसके पक्ष में क्या, इसके फेवर में क्या बात है और इसके विरुद्ध क्या बात है ना। तो कोई भी अगर बात है, जैसे हमने बोला कि क्या परोपकार अच्छी बात है कि बुरी बात है, तो एकदम एक निर्णय पे नहीं आना चाहिए बुरी बात है। क्यों बुरी बात है, परोपकार अच्छी बात है। नहीं, आप जैसे ही बोलोगे, सपोज आप जो बाहर के लोग हैं, आम जनता है, उनके सामने किसी ने पूछा क्या परोपकार बुरा है, आप बोलोगे हाँ परोपकार बुरा है, और बात खत्म हो गई, वो आपकी आगे की बात सुनेगा ही नहीं वो। नहीं, तो पहले आपको ये बोलना पड़ेगा कि परोपकार अच्छा है, उसमें ये अच्छाई है, लेकिन ये अच्छाइयों के साथ में ये उसके साथ कीमत जुड़ी हुई है उसकी, है ना। तो क्या आप ये कीमत देने के लिए तैयार हो, तो स्वाभाविक रूप से बोलेगा कि नहीं, मैं ये कीमत नहीं देना चाहता। नहीं, सो जो हमारा रोग है, और जो रोग हमारा है कि हम भोग ग्रस्त हैं, तो हमने भोग ग्रस्त का बिल्कुल उल्टा नहीं करना, हमने उसको, हमने उसमें कृष्ण भावनामृत मिलानी है, क्योंकि परेशानी खाने में नहीं है, परेशानी सोने में नहीं है, परेशानी सेक्स करने में नहीं है, परेशानी ये सारी चीज़ें अपनी संतुष्टि के लिए करने में है। अगर हम यही सारी चीज़ें अगर हम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो वही सारे काम जो हम पहले भी कर रहे थे, काम सारे वही रहेंगे, लेकिन अभी वो सकाम कर्म या विकर्म ना रहकर भक्ति कर्म, भक्ति योग के अंदर उनको हम गिनती कर सकेंगे उनको, है ना। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मैं सोच रहा था इस बारे में चर्चा करें, तो इसको हम यहीं पे, किसी का कोई,
आपने बताया कि जो दूध में जो खटास लगाई तब वो दूध रूपांतरित हो गया, उसी प्रकार अपनी इच्छाओं में जैसे ही हमने कृष्णा को बीच में लेके आए तो वो चीज़ चेंज हो गई, वो हमारा इलाज हो गई। परंतु क्या ये इलाज ही सब कुछ है, फिर उसमें हम उन चीज़ों से तो आसक्त रहे ही, भक्ति तो ऐड ऑन हो गई परंतु चीज़ों से तो आसक्ति नहीं छूटी ना।
क्यों, आसक्ति कहाँ है, जब आप अपने लिए नहीं कर रहे तो फिर आसक्ति कहाँ है। आसक्ति का मतलब आप अपने लिए कर रहे हो, कृष्ण भावना भावित कार्य का मतलब है कि आप किसी और के लिए कर रहे हो।
मजे तो हम ले रहे
हैं। नहीं, आप मजे कहाँ ले रहे हो, मजे भी आ रहे हैं, और मजे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि भगवान उसमें वो सुख डाल रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं कि भक्ति नीरस नहीं है, भक्ति, थोड़ा आगे आ जाओ प्रभु, पीछे वो बैठ जाएगा, भक्ति क्या है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भक्ति जब आप करोगे तो बहुत ही सुख का अनुभव होगा, है ना। तो भगवान द्वारा प्रदत्त सुख है वो, आपने अपनी मर्जी से नहीं छीन लिया वो सुख, आपने भगवान से अलग होकर स्वतंत्र सुख नहीं लिया, आपने ऋषिकेश ऋषिकेण, हाँ, आपने अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा की, और जब आपने इंद्रियों के स्वामी की सेवा की तो उससे आपकी इंद्रियां भी, क्योंकि इंद्रियों के स्वामी संतुष्ट हो गए तो उनकी संतुष्टि से आपकी इंद्रियां भी संतुष्ट हो गई, इसीलिए जो भक्ति है वो सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इसीलिए कहते हैं कि जो भक्ति है वो करने से बहुत ज़्यादा सुख का अनुभव होगा, क्योंकि हम उसकी इंद्रियों को संतुष्ट कर रहे हैं जिनकी वजह से हमें इंद्रियां मिली, और जो हमारी इंद्रियों को पूर्णतया संतुष्ट करने में पूर्णतया सक्षम है। नहीं, तो हमें अच्छा लगेगा, और अच्छा क्यों नहीं लगना चाहिए, आखिर हम इतने अमीर पिता के पुत्र हैं हम, तो हमें अच्छा क्यों नहीं लगना चाहिए? हमें अच्छा लगना चाहिए, बल्कि हमें सुरक्षा की भावना हमारे अंदर आनी चाहिए कि अब हम अनाथ नहीं हैं, अब हम सनाथ हैं। तो हमारे में वो जब भावना आएगी तो हमें बुरा थोड़ा ना लगेगा, हमें अच्छा लगेगा। और ये बिल्कुल स्वाभाविक, नेचुरल जो है, सहज प्रवृत्ति है, सहज भावना है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को कष्टों में डालो, दुखी रहो, नहीं। आपको भगवान सुख देंगे क्योंकि भगवान सुख देना चाहते हैं, भगवान सुख के आधार हैं, हम विमुख हैं उनसे। तो जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे तो हमें भगवान के उस सुख वाले पक्ष की हमें प्रत्यक्ष अनुभूति होगी। और भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह भी रहे हैं अर्जुन को कि देखो, ये ज्ञान आप अपने जीवन में उतारोगे तो विज्ञान बन जाएगा, है ना। और विज्ञान का मतलब क्या होता है? जिसको आप अनुभव कर सकते हो, है ना। तो अगर आप स्वादिष्ट प्रसाद अगर आप ग्रहण कर रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है ना। आप रसगुल्ला खाते समय रोना थोड़े ना चाहिए, रसगुल्ला है, अच्छा है, हम खाएंगे, प्रसाद है बेसिकली।
रसगुल्ला मिला अच्छी बात है, पर मैंने भोग इसलिए लगाया कि रसगुल्ला मुझे अच्छा लगता है, तो उसमें भी तो प्रॉब्लम है ना ब्रो।
वो ठीक है, वो शुरुआती स्तर है, कम से कम हमने शुरू तो किया। जैसे अगर सपोज किसी को वायरल हो जाए तो ऐसे थोड़ा ना एक गोली खाते ही ठीक हो जाएगा, हफ्ता 10 दिन उसको दवाई, वो कोर्स पूरा करना पड़ेगा ना, वो दवाई लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार से ऐसा नहीं कि हमने पहला रसगुल्ला भोग लगाया, काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, है ना। तो हमें जब हम लगाएंगे भोग तो हम वो रसगुल्ला लाए इसलिए थे बाजार से कि मैंने खाना है, लेकिन हमने भगवान को दिया, मैंने भगवान को दिया। और इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आप दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ है कि आप काम करने से पहले भगवान के बारे में सोचो, और दूसरी बात है आप काम करने के बाद भगवान के बारे में सोचो। तो जब भगवान कह रहे हैं यत करोषि यत अश्नाशि यत जुहोषि दिदासि यत तपस्सी कौन्तेया तत् कुरुष्व मत अर्पणा, ठीक है तुमने काम कर लिया लेकिन उसका फल मुझे अर्पण कर दो, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, हमारे चेतना शुद्ध होगी, हमारे मन में वैराग्य आएगा, हमारे जब हम भगवान को हम अर्पण करेंगे तो भगवान, हमने पूरी शुद्ध भक्ति से भगवान को अर्पण नहीं किया लेकिन भगवान फिर भी उसको पवित्र करेंगे, उसको कि चलो शुरुआत की इसने, है ना। तो जब हम वो प्रसाद ग्रहण करेंगे, हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी, तो धीरे धीरे हमारे मन में स्वतः ये भावना आएगी, है ना। और जब हम वरिष्ठ भक्तों के, अच्छे भक्तों के संपर्क में रहेंगे, वो बार बार आपको ये बात बताते रहेंगे, बार बार बोलते रहेंगे, तो हम पहले आर्टिफिशियली बनावटी रूप से जबरदस्ती सोचेंगे कि यार भगवान के लिए कुछ करते हैं, हाँ। लेकिन जब हम जबरदस्ती बार बार सोचते रहेंगे तो हमारे दिमाग में वो बात घर कर जाएगी, है ना। जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो वो करना हमारे लिए स्वाभाविक हो जाता है। और इसी पुस्तक में प्रभुपाद पिछले अध्यायों में कह रहे हैं कि जो आदत है वो हमारी प्रकृति बन जाती है, वो एक प्रकार की दूसरी प्रकृति है, जैसे हमारा स्वभाव है, कई काम हम बिना सोचे समझे कर लेते हैं, इसी तरह से हम कोई काम जबरदस्ती करते रहेंगे बार बार, तो एक समय ऐसा आएगा कि उस काम को करने के लिए हमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फटाक से हमने सामने आई वो चीज़, हम बिना सोचे समझे वो काम कर देंगे, इसी को आदत कहते हैं, है ना। धीरे धीरे हमारे स्वभाव का वो हिस्सा बन जाएगी, तो शुरुआत वैसे ही होगी, है ना। पहले दिन से, पहले क्षण से कुछ नहीं होगा। तैराकी भी सीखनी, ऐसे नहीं पानी में कूदे चलो भैया 100 मीटर का गोल्ड मेडल जीत लिया ओलंपिक में, ऐसा नहीं होने वाला। पहले डूबोगे, ऊपर आओगे, साथ में वो लाइफ गार्ड रहेगा, नहीं वो आपको नीचे पेट पे हाथ रख के ऊपर उठाता रहेगा, है ना, और बोलेगा ऐसे मारो हाथ, ऐसे पैर मारो। सो इसी तरह से जब हम एक एक्सपर्ट डिवोटी के साथ रहेंगे, उससे बार बार पूछते रहेंगे, और एक्सपर्ट डिवोटी का मतलब गुरु है ना, सो इसीलिए गुरु की शरण लेना बहुत आवश्यक है, है ना। जब हम गुरु की शरण लेंगे तो गुरु के डर से हम बहुत सारे काम जो अभी नहीं कर रहे हैं वो हम करना शुरू कर देंगे, नहीं। सो जब हम उसको बार बार करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो हमारी आदत बनते जाएंगे, फिर हमें उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर हम, हमारी इच्छा थी कुछ खाने की, हम लेके आ गए, भगवान को भोग लगा, खा लिया, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन साधना भक्ति तो है, वो साधना भक्ति का अंग है। भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं, हमने सोच लिया भगवान को भोग लगा के खाएंगे, है ना।
भोग की जो बात हो रही थी, भोग में कोई कि उसमें किस भाव में मिला देंगे तो भोग नहीं दवाई बन जाएगी। अब कई लोग जैसे मीट मदरा दारू पीते हैं, वो किस तरीके से उसको चेंज करेंगे,
मतलब
बात। हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं ये निषिद्ध हैं, जो मदिरा मांस प्याज लहसुन इत्यादि, ये भगवान को पसंद नहीं है। आप किसी व्यक्ति को वही चीज़ तो खिलाओगे जो उसको अच्छा लगता है। तो ये जो निषिद्ध वस्तुएं हैं, मदिरा मांस इत्यादि, ये आप भगवान को कभी भी ऑफर नहीं कर सकते। ये भगवान को ऑफर करने का कोई पॉइंट नहीं है, भगवान कभी देखेंगे भी नहीं उसकी तरह, बल्कि हमें उसका अपराध भी लगेगा, सेवा अपराध लगेगा हमें, है ना। तो सेवा का मतलब है, पहली बात ये जानना कि जिसकी सेवा हम कर रहे हैं उसको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, तो उसको वही वस्तुएं देना जो उसको अच्छी लग रही हैं। अगर हम वही वस्तु उसको देंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे ना। तो भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यही चीज़ें दो, मांस भगवान नहीं कह रहे हैं, ठीक है।
जो आपने बताया कि भगवान की इच्छा है वो हम सोच के कर रहे हैं, उसमें भगवान को जो अच्छा लग रहा है वो हम कार्य कर रहे हैं, परंतु जब हम डिवोटी एसोसिएशन करते हैं तो उसमें भी क्या हमें वही कार्य करने चाहिए जो हमारे साथ में डिवोटी से उनको अच्छा लग रहा है? हो सकता है वो कार्य उनके लिए ठीक ना हो, हम उन्हें बोले नहीं ये गलत है। जैसे कोई डिवोटीज गलत कार्य कर रहा है, ठीक से कर नहीं रहा काम,
क्या
कोई भी एक्टिविटी सेवा ठीक से नहीं कर पा रहा हो, तो अगर हम उसको बोल रहे हैं भाई इस तरह करो, तो वो उसकी इच्छा के अनुसार तो नहीं है वो, तो वो उसके, अगर हम उसी के इच्छा अनुसार चलते रहेंगे तो सेवा में कमी आ जाएगी भगवान की।
वो ये पॉइंट कहाँ से ले आए आप? भगवान और डिवोटी में फर्क होता है। वो आप एक कनिष्ठ भक्त की, न्योफाइट डिवोटी की बात करो, जिसको पूरी नॉलेज ही नहीं है। भगवान सर्वज्ञ है, सारा ज्ञान भगवान से उत्पन्न हुआ है, तो भगवान के परिप्रेक्ष्य में ये बात नहीं लेके आ सकते। और जहाँ तक डिवोटीज के साथ में जो बात हम करते हैं, तो डिवोटीज भी तीन तरह के हैं, हमसे वरिष्ठ, हमारे बराबर, और हमसे जूनियर, जो हमसे नीचे हैं। तो जो हमसे जूनियर है उनको करेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा कर्तव्य है। अगर आप उस डिवोटी को, वो डिवोटी आपसे शिक्षा ले रहा है, अगर सपोज एक डिवोटी है वो आपसे शिक्षा नहीं ले रहा लेकिन आपसे जूनियर है, तो आपका उसको कहने का फर्ज नहीं बनता। वो जिससे शिक्षा ले रहा है आप उसको कह सकते हो कि मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं कर रहा, हो सकता है वो उसी के कहने पर कर रहा हो, अपने शिक्षा गुरु के कहने पर, नहीं तो उसको कहने का फर्ज नहीं है आपका। आप उसको कह सकते हो जिस डिवोटी के संरक्षण में वो मार्गदर्शन में चल रहा है वो, है ना। जहाँ तक फ्रेंड्स की बात है, आपस में फ्रेंड्स में कोई फ्रेंड किसी को कुछ भी कह सकता है। फ्रेंड्स का मतलब ही यही है कि अगर आप मेरे मित्र हो, मैं बिना रोक टोक, बिना किसी लाग लपेट आपको कुछ भी कह सकता हूँ, आप बिना किसी लाग लपेट मुझे कुछ भी कह सकते हो। अगर फ्रेंडशिप का ये मतलब नहीं है तो फिर तो फ्रेंडशिप ही नहीं है, फिर तो बेकार होगी बात, नहीं, और जो आपसे सीनियर है उसको नहीं आप कुछ कह सकते, है ना, क्योंकि हमें नहीं पता वो कोई काम कर रहा है, क्या सोच के कर रहा है, उसके पीछे उसके 1 करोड़ रीज़न हो सकते हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप दूर हो जाओ, है ना, क्योंकि जो कमी आप देख रहे हो, आप यहाँ पर हो, आप बिल्कुल जो यहाँ पर है ऊपर आपसे 1 करोड़ मील ऊपर बैठा है, वो भी तो देख रहा है, अगर बोलना होगा वो बोल देगा, हमें क्यों इतनी उतावलापन हो रहा है बोलने के लिए। नहीं, पीछे मैं एक शादी में गया, काफ़ी समय पहले की बात है, 20-25 साल पहले की बात है, एक शादी में गया तो मैं अपने फादर के साथ था, तो बड़ी सारी चीज़ें गलत हो रही थी, मैंने कहा देखो जी ये ऐसा हो रहा है, देखो जी वैसा हो रहा है, वो गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, वो कह रहे हैं तुझे क्या लेना देना भाई, वो इतने बड़े बड़े बैठे हुए हैं बुजुर्ग 80-80 साल के, बोलना होगा वो बोल देंगे, भाई तुझे क्या लेना देना, तू अपना चुप करके बैठा रहा, आया अपना खाना खा निकल यहाँ से। नहीं, तो ये जो बात है ये यहाँ पर भी लागू होती है, ये शिष्टाचार है, जो आपसे सीनियर अगर कुछ कर रहा है उसको आप कुछ नहीं कह सकते, जो आपके बराबर है कुछ भी कह सकते हो, आपके संबंध की जो गाढ़ापन है उस पर डिपेंड करेगा, है ना, अगर आपका पावन जनार्दन का बहुत गाढ़ा संबंध है, गाली गलौज कर लो, आपस में कुछ भी बोल दो, अरे क्या पागलों की तरह काम कर रहा है, अकल नहीं है, बेवकूफ है, तो ये भी बोल सकते हो, वो बुरा नहीं मानेगा, लेकिन अगर संबंध नहीं है यही लाइन बोलो वो ईंट उठा के मार देगा, वो बोले तुझे क्या लेना देना भैया, नहीं है कि नहीं। तो जब आप डिवोटिस के साथ में जब आप व्यवहार करते हो तो ये 3 दृष्टिकोण देख के व्यवहार करो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। प्रॉब्लम आती है जब हम अपने जो हमारी सीमाएं हैं जब उसका अतिक्रमण करते हैं, हम अपने सीनियर डिवोटी को उसमें उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, या कोई किसी के मार्गदर्शन में है आपसे कोई लेना देना नहीं, जाके उसको हम ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, तो प्रॉब्लम्स वहाँ पर आती हैं। आप इस कॉन में अगर 100 प्रॉब्लम्स हैं, 98 प्रॉब्लम इसी कारण से हैं, नहीं क्यों? एक पहले
जैसे भगवान कह रहे हैं प्याज लहसुन ना खाने के लिए, नॉन वेज नहीं खाना, वे विचार नहीं करना, लेकिन वो अगर धोती कुर्ता पहन के तुलसी माला पहन के अगर ये सब करता है तो क्या हमें उसे रोकना चाहिए?
तो भक्तिनाथ ठाकुर उसके बारे में कह रहे हैं कि वो कली का चेला है, ना के तिलक कंठी माला, लेकिन अगर व्यवहार सही नहीं कर रहा तो वो कृष्ण का चेला नहीं है, वो कली का चेला है वो। ठीक है, ठीक है ना?
आपका
जैसे शादी में गए तो आपने जिज्ञासा हुई कि मना करना चाहिए, जब वहाँ पे प्रवृत्ति ऐसी बनी हुई सभी लोगों की ऐसा करने की, तो उसमें उसे सही कैसे स्थापित कैसे होगा, मतलब वहाँ पे जब सभी लोग बाकी एक ही तरह के हैं, वो उसी तरह की प्रवृत्ति बनी हुई उनकी करने की काम की, तो उसमें सही कौन बोलेगा, उसको स्थापित कौन करेगा? आपको तो मना कर दिया गया कि पिताजी ने ये तुम्हें कर लेना देना, तो ऐसी हम सबको यदि ऐसी सोचा जाए समाज में कि मुझे क्या लेना देना, तुम क्यों उसके घर जा रहे हो बताने, तो वह कैसे स्थापित होगा?
मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि आपको क्या लेना देना, लेकिन आपकी सेवा नहीं है बोलना, आपकी सेवा अपने से सीनियर को करेक्ट करने की आपकी सेवा नहीं है, आपको लेने देना यूं नहीं है कि आप उनको बोल नहीं सकते, वो शिष्टाचार नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वो गलत है, आपका भी नंबर आएगा, वो परिस्थिति आपके सामने भी आएगी, उस समय आप अपने आचरण से आप वो गलती मत करो, यूं बदलाव आएगा। हम भी तो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हम किसी को कह रहे हैं वो यूं कर रहा है वो यूं कर रहा है, हमने किसी को नहीं कहा, हमने नहीं, ऐसा थोड़ा ना कि हमें कमियां नहीं दिख रही, कमियां हैं लेकिन बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं जो दूसरे डिवोटिस कर रहे हैं हम कर भी नहीं सकते हैं। 24 घंटे लोक सेवा में लगे हुए हैं, कुछ गलतियां हो रही हैं उसमें क्या बड़ी बात है, वो गलतियों को आप मत दोहराओ, आप अच्छे से करोगे दूसरे देखेंगे तो बदलाव शुरू हो जाएगा, है ना, आपसे शुरू होगा बदलाव, ठीक है। आप संतुष्ट?
अभी हमें किसी से कहने का मतलब नहीं है, किस तरह समाज में हम जा रहे हैं
वो प्रचार अलग है। नहीं आप कह सकते हो जो आपसे जूनियर है आपको बोलो,
तो मतलब उनके
आपके मित्र हैं उनको बोलो, आप ठाकुर को बोलो, कुछ भी
जो हमसे ऊपर उनसे बात बातचीत ना करिए,
जो आपसे ऊपर है जो आपसे सीनियर है उनको नहीं बोलना।
नहीं जैसे हम कई लोग बुजुर्ग के पास जाते हैं कि आप क्लास में आए करो ऐसे करना,
सब तो साधारण लोग हो गए ना,
जैसे
तो वो तो जूनियर हो गए ना, जूनियर
समाज में जो है लोग
जूनियर का मतलब जो भक्ति में आपसे जूनियर है, है ना, तो आप जा रहे हो समाज में लोगों को बोल रहे हो प्रोग्राम में आओ तो वो अच्छी बात है, लेकिन आप अगर सोचो कि आप मंदिर के अध्यक्ष को बोल बताना शुरू करो देखो ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, वो आपको आपकी सेवा नहीं है, वो किसी और की सेवा है, वो अपने आप बोलेगा, है ना, क्योंकि हम बोल भी देंगे वो हमारी बात तो मानेगा नहीं, उल्टा संबंध खराब हो जाएंगे आपको मंदिर में, थोड़ा बहुत जो आप आते हो सेवा मिलती है वो सब बंद हो जाएगी, है ना।
आप क्या कह रहे थे? जैसे प्रभु जी हरे कृष्ण, जैसे बोला जाता है कि सीनियर्स को आपको एडवाइस नहीं देनी, सीनियर को करेक्ट नहीं करना, जैसे आपने भी बोला, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई सीनियर हमें बताता है कि आपको ये कार्य नहीं करना है, अगर कोई भी कार्य के बारे में कोई सीनियर बोल रहा है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, तो उसने कहीं ना कहीं से वो चीज़ पढ़ के ही बोली है, उसने आगे स्टडी कर रखी है, उसके बाद वो हमें उस चीज़ के लिए बोल रहा है कि ये कार्य नहीं करने चाहिए, अगर क्या कहते फिर वो सीनियर वही कार्य किसी और से करा रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करा जा सकता है कि उसने जैसे किसी भी चीज़ के लिए कोई भी कार्य करने के लिए सीनियर ने बोला कि ये कार्य नहीं करने चाहिए, ये भक्ति के लिए वर्जित है, भक्ति के लिए ये कार्य नहीं करने चाहिए, तो उसने कहीं से स्टडी करा उसके बाद ही हमारे को बोल रहा है सीनियर, क्योंकि वो ये चीज़ जान चुका है, लेकिन अगर वही सीनियर क्या कहते हैं किसी और को फिर बाद में वही कार्य करने के लिए बोल रहा है और करवा रहा है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए और उस सीनियर को हम क्या एडवाइस दे सकते हैं कि आपने पहले तो बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए फिर दोबारा बोल रहे हो आप ऐसा करो, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए।
सो अगर एक चोर को बोला जाए देखो तुम चोरी मत करो तो अच्छी बात है, लेकिन एक डाकू है उसको अगर बोलोगे देखो यार तुम डाका मत डालो चोरी कर लो जेब काट लो चलो, तो उसको ऊपर उठा रहे हैं ना। अगर किसी को बोल रहे हैं कि आप बाहर से सामान मत खाओ बाजार का बना हुआ, तो लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति आया वो बोले कि भैया ये तो भागो यहाँ से, तो उसको अगर आप बोलो चल यार गोलगप्पे खाने हैं तो उन्हें खा ले चल कोई बात नहीं, प्याज तो प्याज लहसुन मत खाना तो उन्हें खाने हैं गोलगप्पे खा ले, तो उसको वो इस नीचे के स्तर से थोड़ा ऊपर उठा रहा है, फिर यहाँ से फिर ऊपर कभी लेके आएगा वो, ये भी हो सकता है। देखो ऐसी कोई रूल नहीं है जो सब पे समान रूप से चलेगा, सबसे समान सब पर समान रूप से चलने वाला एक ही रूल है 16 माला का जप कम से कम, है ना, उसके अलावा हर एक व्यक्ति के अनुसार रूल्स हैं बहुत सारे, लेकिन किस पे क्या लगाना है वो एक्सपर्ट डिवोटी जान सकता है, इसीलिए एक्सपर्ट डिवोटी की जरूरत है, इसीलिए तो डॉक्टर की जरूरत है। दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन किसको क्या दवाई किस हद तक देनी है वो डॉक्टर देखेगा ना। नहीं, किसी का बीपी लो हो रहा है, उसको डॉक्टर बोलेगा भैया मीठा खा ले फटाफट जाके, और किसी की शुगर 350 है उसको बोलेगा भैया मीठे की तरफ देखिए भी मत। नहीं, सो वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है, डॉक्टर एक्सपर्ट है, वो डॉक्टर देखेगा कि किसको किस समय पे क्या बोलना है। इसीलिए तो एक्सपर्ट डिवोटी की जरूरत है, नहीं तो प्रभुपाद की बुक्स में सब दे ही रखा है, वो जरूरत क्या है सीनियर डिवोटी की। इसीलिए जरूरत है कि किसको क्या किस समय पर बोलना है उसको पता रहता है। अब बात यह है कि पूरी तरह से एक्सपर्ट कोई नहीं है। प्रभुपाद पूरी तरह से एक्सपर्ट थे, प्रभुपाद के आगे बहुत सारे शिष्य बहुत एक्सपर्ट हैं, हाँ उनके भी आगे कई शिष्य बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन ज़्यादातर एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन प्रचार में सभी लगे हुए हैं, है ना। तो गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन उन गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए, है ना। हमें गुण निकालने चाहिए, दोष नहीं निकालने चाहिए। हमें गुणों पे ध्यान देना चाहिए कि चल प्रचार तो कर रहा है ना। जैसे हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, जो आपकी नॉलेज थी 10 साल पहले और आज में कितना फर्क है। आप 10 साल पहले आपसे कोई क्वेश्चन पूछता, आप उसका बिल्कुल अलग उत्तर देते, आज आप बिल्कुल अलग उत्तर दोगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस भी आ गया। इसी तरह से भक्त प्रचार में लगे हुए हैं, गलतियाँ होती हैं, ठीक है गलतियाँ हो रही हैं, धीरे धीरे जब मैच्योरिटी आएगी तो और अच्छे से वो राय देंगे और डिवोटीज को। ये तो ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है।
मैंने अभी डिवोटी का नाम नहीं लूंगा, अभी मैंने एक चीज देखी थी, मना करते हैं जैसे स्त्रियों को, क्या कहते हैं जैसे प्रोजीज लोग सारे हैं तो माताएं लोगों को जैसे कीर्तन करने के लिए प्रोजीज के होते हुए कि कीर्तन वो नहीं करा सकते हैं, अगर नहीं है तो उनको लीड करना चाहिए। तो मैंने प्रेम ध्वनि लीड करा किसी प्रोजी ने, व्यासासन पे कोई प्रोजी बैठे हुए थे और प्रेम ध्वनि क्या कहते हैं एक माता जी से करवाई उन्होंने, तो उसमें उसको किस तरह से देखा जाए कि ये चीज़ ठीक है कि नहीं।
तो हो सकता है वो माता जी ने बहुत अच्छे से सेवा की हो, कोई मतलब पिछले 10 साल से बहुत अच्छे से सेवा कर रही हैं, वो प्रेम ध्वनि कहलवा दी, कौन सी बड़ी बात हो गई उसमें, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट इशू नहीं है। बेसिक पॉइंट ये है कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम दूसरे भक्तों में गुण ढूंढें और जो उनकी कमियां हैं उसको हम नज़रअंदाज करें। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सथैव भजामि हम। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करेगा, और जब भगवान कह रहे हैं जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करेगा, इसका क्या मतलब है, जो मेरे और मेरे भक्तों के साथ जैसा व्यवहार करेगा, ताम सताय पजामे हम, मैं उसके साथ वैसे ही व्यवहार करूँगा, है ना। तो अगर हम दूसरे भक्तों के गुण नज़रअंदाज करेंगे, दोष देखेंगे, तो भगवान क्या करेंगे, ताम सताय पजामे हम, भगवान भी हमारे दोष देखेंगे। लेकिन अगर हम दूसरे भक्तों के दोष ना देखकर उनके गुणों की ओर देखें, और भगवान कह रहे हैं अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग, है ना, कि जो मतलब किसी से कोई बड़ी भारी गलती भी हो गई हो लेकिन मेरा भजन कर रहा है, हाँ साधु एव स मंतव्य सम्यक व्यवस्था व्यवस्थिति ही सा, उसको साधु ही मानना चाहिए, उसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अब बहुत ही बड़ा पापी आ गया हमारे बीच में, है ना। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम दूसरे भक्तों के गुणों को देखें, उनके दोषों को ज़्यादा ध्यान नहीं दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें किसी भक्त का आचरण अच्छा नहीं लग रहा हम उसके साथ चिपके रहें। अगर हमें किसी भक्त का आचरण हमें लगता है कि नहीं अच्छा है तो उसका संग आप मत करो, किसी और भक्त का संग करो जिनके साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आपको लगता है कि ये अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, अच्छे से दूसरों को गाइडेंस दे रहे हैं, है ना। जिन भक्तों का आचरण आपको ठीक नहीं लग रहा आप उनके प्रति मन में कोई दुर्भावना मत लेके आओ, लेकिन उनका संग मत करो, है कि नहीं। ठीक है ना, आप कुछ कहना चाह रहे थे।
अच्छा।